अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः जन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोर् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 12 में हमने क्या देखा था? पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था जो लोग बिल नहीं भरते वो लोग चोर हैं। यही बात कही थी ना? कौन नहीं भरता है बिल? जो चोर है। जो बिल नहीं भरता उसका पाइपलाइन काट दिया जाता है। जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, कर्तव्य क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग ले रहे हैं तो उसका बिल भरे, है कि नहीं? वाटर सप्लाई गवर्नमेंट कर रहे हैं तो उसका बिल भरे। ये कर्तव्य कर्म है। परंतु जो लोग इस प्रकार से सूर्य देव से प्रकाश प्राप्त करते हैं, वरुण देव से जल प्राप्त करते हैं, सभी कुछ प्राप्त करते हैं लेकिन उसका बिल नहीं भरते, यज्ञ नहीं करते। बिल भरना अर्थात उनके लिए यज्ञ करना, यज्ञ कर्म नहीं करते, वो कौन है? चोर है। पिछले श्लोक में भगवान ने जो कहा था वो चोर की व्याख्या कही थी। चोर अर्थात तामसिक। पिछले श्लोक में तामसिक प्रकार के, तामसिक प्रकृति के लोगों का वर्णन किया गया है। वो लोग तामसिक होते हैं, चोर होते हैं, ऐसे भगवान ने। इस श्लोक में भगवान राजसिक तथा सात्विक भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। राजसिक तथा दो प्रकार के लोगों का वर्णन क्या है? पहला शब्द पहले पंक्ति में कहा है
अर्थात ऐसा भोजन जिसे श्री कृष्ण ने ग्रहण करके छोड़ दिया। ऐसा भोजन जो श्री कृष्ण ने ग्रहण करके छोड़ दिया है, ऐसा भोजन किसके लिए छोड़ा है? बाद में खाने के लिए हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं, बाद में खाने के लिए। भगवान ने क्या किया? यज्ञ शिष्टाशिना संत, ऐसा भोजन भगवान ने किया और फिर उसको छोड़ दिया। किसके लिए? संत, संतों के लिए, भक्तों के लिए।
अर्थात
ऐसा भोजन जिसे श्री कृष्ण ने ग्रहण करके छोड़ दिया है, इसका दूसरा अर्थ भी है। ऐसा भोजन जिसको खाने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें आदेश देते हैं,
कैसा भोजन?
भगवान श्री कृष्ण हमें खाने के लिए जिस जो आदेश देते ये खाओ, कौन से भोजन का आदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं जो उन्होंने छोड़ दिया है ना? दूसरा तीसरा कुछ मत खाओ, जो उन्होंने खा के छोड़ दिया है वही खाओ, इसका आदेश भगवान देते हैं। अर्थात भगवान क्या करते हैं, भोजन सारे जीवों को भोजन करवाते हैं। लेकिन कैसे, जो जीव भगवान को भोजन भोग अर्पण करते हैं और भगवान जो फिर छोड़ देते हैं, जो वो खाते हैं वह खाने का उपदेश भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। लेकिन क्यों क्यों दे, ऐसा उपदेश क्यों दे रहे होंगे भगवान इसको? यज्ञ आशीर्वाद सुना से
आपने वस्तु अर्पण कर दी तो इस मतलब का चोर निकलेगा।
क्या निकलेंगे?
चोर
चोरी नहीं करेगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो पिछले श्लोक में क्या कहा,
चोर
तो हमको तो चोर बनना नहीं है, संत बनना है। तो संत क्या करते हैं, उच्चिष्ट खाते हैं। जो संत नहीं है वो क्या है, वो पिछले श्लोक में होंगे। हमको क्या बनना है, चोर बनना है कि संत बनना है? दोनों में ही बनना है चोर बनना है कि संत बनना है? संत की विशेषता क्या है, वो भगवान का उच्चिष्ट खाते हैं और क्या करते हैं, भोजन और भोजन दो ही काम करते हैं। भोजन करते हैं जो भगवान के उपदेशों के अनुसार प्रसाद ही पाते हैं, और फिर क्या करते हैं, भजन करते हैं। भजन और भोजन ये संत की प्रवृत्ति है। भोजन अर्थात प्रसाद, प्रसाद अर्थात कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु कुछ नास्तिकवादी लोग क्या कहते हैं, कुछ नास्तिकवादी लोग कहते हैं भगवान निराकार है, ईश्वर निराकार है। लेकिन जब ईश्वर निराकार है तो फिर खाएंगे कैसे, खा सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि भगवान ईश्वर क्या है, निराकार। जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने हमको जीवा दी, हमको मुख दिया, तो सब जिसने हमको दिया, क्या वो स्वयं जीवा और मुख से वंचित होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जिसने हमको मुख दिया है, जिसने हमको खाने के लिए जीवा दी है, क्या वो स्वयं मुख से जीवा से वंचित होगा? हाँ, तो जो निराकारी कहते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार का अर्थ क्या है, क्या है,
आकार न हो,
आकार न हो, स्वरूप न हो, स्वरूप न हो,
देखा ना जा सके,
जो देख दिखता नहीं है। और प्रभु जी ने बताया निराकार का क्या अर्थ है, इसका आकार नहीं है,
ज्योति है,
एक ज्योति है, ऐसा वो लोग कहते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारे हमारे हिसाब से क्या है,
रूप नहीं, आकार नहीं, अवयव नहीं,
भौतिक आकार नहीं, तो भगवान खाते कैसे? वेदों में वर्णन है, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पाद, सभूमि सहस्त्र शीर्ष सहस्त्रपाद और फिर एक तरह कहते हैं निराकार, एक तरह वेद कहते हैं कि इनको तो सहस्त्र शीर्ष और सहस्त्र पैर है, पाद है। क्या समझेंगे आप? तो इसका अर्थ निराकार थोड़ी होता है,
स्वतंत्र है,
इसका अर्थ निराकार थोड़ी हुआ। जो वेदों में कहा है सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपाद, पुरुष सूक्त में वर्णन है, सारे देवतागण भगवान का वर्णन करते कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो भगवान को सहस्त्र पैर है, सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र हस्त है, अर्थात भगवान के जो इंद्रिय है वो अमर्याद, जिसका आकार हम देख ही नहीं सकते, इतना अनंत है, उसको निराकार। जिसका आकार अनंत है, आप इमेजिन कल्पना, जब अर्जुन ने भगवान के विशाल रूप को देखा, दिव्य रूप को देखा, तो देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, और वो भयभीत हो गए, इतना भव्य दिव्य रूप, इतना अनंत रूप, इतना भव्य आकार, इतना दिव्य आकार हमारे कल्पना शक्ति के परे, ऐसा आकार जो अनंत है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसको निराकार। लेकिन भौतिकवादी लोग क्या कहते हैं, निराकार अर्थात जिसको कोई आकार, परंतु शास्त्र के अनुसार वेद शास्त्र कहते हैं निराकार अर्थात ऐसा आकार जो अनंत है, जिसका कोई कोई माप या कोई मापन नहीं हो सकता, जिसको माप नहीं जा मापा नहीं जा सकता, यू कैनॉट मेजर, उसको कहते हैं निराकार। तो भगवान को निराकार समझने वाले भगवान को निराकार रूप में भी ठीक से नहीं समझते, बताओ प्रॉब्लम तो ये है। मान लिया आप निराकार समझते हैं भगवान को, तो निराकार तो ठीक से समझो, निराकार तो ठीक से समझना चाहिए। तो यहां पे जो यज्ञाधिष्ठान कहा गया, भगवान इतने भव्य दिव्य, इतने अनंत अमर्याद है, और वो चाहते हैं कि जो कुछ भी आप कार्यकलाप कर रहे हो वो सब उनके उपदेशों के अनुसार होवे, क्योंकि उनसे कोई भी कार्यकलाप जीतता है, और विशेष कार्य जो होता है वो क्या है, हम क्या खाते हैं जिससे हमको एनर्जी शक्ति मिलती है, वहां से शुरुआत होती है। हमारे दिन की शुरुआत कहां से होती है, खाने से होती है, लगभग उठते से ही खाना और सोने के पहले खाना, हमारे जीवन का जो मुख्य कार्यकलाप है वो क्या है, तो वहां से शुरुआत होती है। वो कहते हैं भगवान को भोग दिखाते, भगवान खाते हैं, प्रश्न क्या है, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते, भगवान खाते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ, इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण आप जो खिलाते हैं वो खाते हैं। मन में कई बार शंका होती है कि भगवान खाते ही नहीं है, हम तो कई सालों से खिला रहे हैं, कई सालों से तो भोग लगा रहे, कभी खाते हुए देखा ही नहीं है भगवान। लेकिन इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं उसका अर्थ तो ये होता है कि भगवान आपने लगाया हुआ भोग स्वीकार करते हैं। चैतन्य भागवत में कथा आती है, आपको पता होगा, मुरारी गुप्त और चैतन्य महाप्रभु के लीला का वर्णन है। मुरारी गुप्त कौन है, हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, चैतन्य देव के भक्त है। एक दिन बड़े भाव विभोर हो गए भगवान चैतन्य की लीलाओं में, और घर पे आके क्या किए, दाल भात बनाए बहुत अच्छे से और कृष्ण को कहले कृष्ण खाओ। दाल भात ऐसे लिए हाथ में, कृष्ण के विग्रह के सामने बैठे, कृष्ण खाओ ऐसे खाओ करते और ऐसे नीचे छोड़ देते दाल भात। फिर कृष्ण खाओ खाओ करते और छोड़ देते नीचे, फिर कृष्ण खाओ खाओ खाओ। इतना दाल चावल खिलाया कृष्ण को और भाव विभोर एकदम शुद्ध भाव से खूब खिलाया, पूरा नीचे पूरा दाल चावल से भर गया, सारा जमीन पे दाल चावल, और फिर भी खिला रहे, खाओ कृष्ण खाओ कृष्ण खाओ कृष्ण खाओ। दूसरे दिन सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु उनके यहां पे आए और उनको कहने लगे, हे वैद्य, वैद्य थे पेशे से, क्या थे, वैद्य थे, डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी, हाँ तो वैद्य थे, तो उनको कहने लगे कि सबसे पहले तो ऐसा कुछ जल रसपान कराओ कि मुझे जो अजीर्ण हो गया है वो ठीक हो जाए। तो मुरारी गुप्त कहने लगे, इतने सुबह सुबह कहां से अजीर्ण हो गया आपको, इतना क्या खाया आपने आपको जो अजीर्ण हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि कल रात को आपने इतना खिलाया इतना खिलाया इतना खिलाया कि अभी भी मेरा पेट फुला हुआ है, इतना अजीर्ण हो गया, तुरंत अभी कुछ ऐसा दवाई दो, वो भी आप ही दो, ऐसा कुछ दवाई दो कि मेरा ये जो कुछ भी खाया है इसका पाचन हो जाए, अपचन हो गया है मुझे इतना खिलाया। अब सोचो वो तो क्या कर रहे थे, कृष्ण को खिला रहे थे और नीचे डाल रहे थे, जलपान नहीं करवाया था, लेकिन वो चाह रहे थे कि इतना खाया ऐसा रस पिलाओ कि ये डाइजेस्ट हो जाए, खिलाए ही गए खिलाते ही गए। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना, केवल खाओ 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 और पानी न पियो, क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी ना इसे थोड़ा सा। तो ऐसे ही खिलाने में इतने भावुक हो गए, खिलाते ही बैठे, पानी का ध्यान ही नहीं रहा उनको खिलाने का, खाओ कृष्ण खाओ कृष्ण खाओ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आगे कहने लगे, मुझे रस पिलाओ क्योंकि अजीर्ण हो गया। इसका अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भक्त से खाते, संतों से खाते, यज्ञाशिष्टांशिना संत, भक्तों से स्वीकार करते हैं वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यज्ञाशिष्टांशिना संतो संत, तो भगवान भक्तों से संतों से ही भोग स्वीकार करते हैं, तो अब संत बनना पड़ेगा, है कि नहीं, यहां संत कहा है तो संत बनना होगा, संत नहीं बनेंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, वो संत कैसे बने। भगवान को तो देखिए ऐसा है, भगवान का झूठा हमको खाना है यह उपदेश, उसके लिए भगवान को खिलाना पड़ेगा, और भगवान तो संतों के हाथ का खाते हैं इसलिए संत बनना पड़ेगा, तो भगवान को खिलाने के लिए संत बनना पड़ेगा। संत कैसे बना जा सकता है, नहीं वो संत के हाथ से खाते तो पहले संत बनना पड़ेगा ना, तभी तो खाएंगे। भगवान का, भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना चाहिए, और संकीर्तन है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद महाराज क्या कहते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, किस प्रकार से हम भक्त बन सकते हैं, किस प्रकार से संत बन सकते हैं, नवधा भक्ति के, विविध प्रकार के भक्ति के मार्ग के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, अर्चन के द्वारा इत्यादि, गोपाल जी ने तात्पर्य में लिखा है। इन भक्ति मार्ग का अवलंब करके हम भक्त बन सकते हैं, संत बन सकते हैं, और फिर भगवान को क्या करते हैं, भोग अर्पण कर सकते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे जो संत पुरुष होते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य बड़ा ऊंचा होता है। इस प्रकार से जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य बहुत ऊंचा होता है। वो आवेग रहित रहते, वो कभी एंग्जाइटी में नहीं रहते, कभी भी एंग्जाइटी में नहीं रहते, आवेग। और आवेग ही पाप है। बेसिकली पाप क्यों होता है? एंग्जाइटी के कारण कुछ ना कुछ हलचल मची रहती है हमेशा अंदर, है ना? उस हलचल के कारण, उन आवेगों के कारण व्यक्ति पापमय कार्य करते रहता है। एंग्जाइटी के कारण व्यक्ति रॉन्ग एक्टिविटीज करता है, गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है। परंतु ये जो भक्त होते हैं, ये क्या होते हैं? आवेग रहित, दे आर नॉट एंग्जियस। वो एंग्जाइटी, वो आवेग उनमें नहीं रहता। आवेग नहीं रहने के कारण वो पाप नहीं करते, और वो पाप नहीं करते इसलिए वो क्या है, सत्व स्तर पे, उच्च स्तर पे, उच्च स्तर का जीवन जीते। जो पाप नहीं करते वो उच्च स्तर का जीवन जीते, जो पाप करते हैं कौन से स्तर का जीवन जीते हैं? नारकीय जीवन जीते हैं, नरक लोक का जीवन इधर ही जी लेते हैं, यही प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे का मार्ग आसान नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परंतु शास्त्र कहते हैं आवेग रहित जीवन ही सच्चा सुख है। सब कुछ, हम सब कुछ क्या तलाश रहे हैं? सब कोई क्या तलाश रहे हैं? आनंद, हैप्पीनेस। किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सुख सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए, हम सब ढूंढ रहे हैं उसको। लेकिन कर्म कैसे हो रहे हैं हमारे से? आनंद को प्राप्त करने के लिए कर्म हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि नित्य आवेग में रहते हैं, कुछ ना कुछ उधेड़ गुण में रहते हैं नित्य। और जो रॉन्ग एक्टिविटीज, गलत कार्यों की ओर हमको ले जाते हैं, हमारी एंग्जाइटी, हमारे आवेग हमको पाप के रास्ते पे ले जाते हैं। हमारा जीवन आनंद में नहीं हो सकता है। लेकिन भक्ति में आने के पश्चात जब हम भगवान को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, और भगवान के साथ संबंध जोड़ देते हैं, है कि नहीं? जोड़ते हैं कि नहीं? जोड़ देते हैं, तब हमारा जीवन उच्च स्तर का जीवन हो जाता है। और जब हम उच्च स्तर का जीवन जीते हैं तो अपने आप सारे आवेग खत्म हो जाते हैं। नो एंग्जाइटी एट ऑल, कोई एंग्जाइटी नहीं रहती, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर कहते हैं मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, अर्थात यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा, वो किसी भी प्रकार के बंधन से नहीं बंधेगा, या किसी भी प्रकार के पाप से नहीं बनेगा। कब? इस प्रकार से यज्ञ शेष, यज्ञ का प्रसाद पाके, अर्थात यज्ञ कर्म करके, यज्ञ का प्रसाद अर्थात क्या? यज्ञ कर्म करके। जो इस प्रकार से यज्ञ कर्म करता है वो बांधा नहीं जाता, वो पाप से बांधा नहीं जाता, बंधनों से बांधा नहीं जाता। और जो यज्ञ कर्म नहीं करता वो बंधन में फंस जाता है। ये हमने दो श्लोक पहले ही देख लिया है, यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोको ये कर्म बंधन, है कि नहीं? यज्ञ कर्म के अन्यत्र कर्म करते हैं तो बंधन में फंस जाते हैं। और इस प्रकार से जो यज्ञ शेष का अनुभव करता है, यज्ञ में जो यज्ञ कर्म करता है, वो व्यक्ति पाप से नहीं बंधता बंधा जाता या किसी भी प्रकार के बंधन से नहीं बांधा जाता। इसका अर्थ यह है कि वो कर्मों से कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। आप बताइए कितनी बड़ी फैसिलिटी है। संसार में हम जो कोई भी कर्म करते हैं, जो कुछ भी कर्म करते हैं, वो प्रत्येक कर्म हमको बांध देता है। एक कर्म एक रस्सा। सोचिए रोज कितने कर्म करते हैं, उतने रस्ते से हम रोज लपेटे जा रहे लपेटे जा रहे लपेटे जा रहे। जब खोलने जाओगे तो कितने लपेटे खोलने होंगे आप सोचिए। अर्थात जितने कर्म हम कर रहे हैं अभी या किए होंगे, वो प्रत्येक कर्म हमको क्या करता है, बांध देता है, बंधन में बांध देता है। परंतु यहां क्या कहा है, यहां कहा है मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। इस प्रकार से यज्ञ शेष अर्थात यज्ञ का प्रसाद अर्थात यज्ञ कर्म जो करेगा, भगवान को भोग अर्पण करके जो प्रसाद पाएगा, अपने कर्म जो यज्ञ कर्म करेगा, वो सारे पापों से अर्थात सारे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। कितनी सुपर कैप्सूल है बताइए। ना आपको जंगल में जाके भयानक तपस्या करने के लिए कहा, ना कोई नदी में अंदर डूब के 60,000 वर्ष उधर बैठने के लिए कहा, ना धूप में छत पे खड़ा होके एक पैर पे खड़ा होके तपस्या करने के लिए कहा। क्या कहा, खाओ। खाने से कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। बताओ इससे और क्या चाहिए, क्या खाने से कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी नहीं था। इसीलिए तो कलयुग को स्वर्ग युग कहते हैं। नहीं, इतनी बड़ी फैसिलिटी कौन से युग में इतनी बड़ी फैसिलिटी कभी मिली, कभी पढ़ा है शास्त्र में, सतयुग द्वापर युग त्रेता युग, इस युग में देखिए मुच्यन्ते सर्व किल विषय केवल यज्ञ शिष्टान सुभवसा। यज्ञ का प्रसाद भगवान को भोग अर्पण करके उसके पश्चात प्रसाद खाने से सारे कर्म का नाश हो जाता है। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका अर्थ यह है कि सारे कर्म फल संचित प्रारब्ध और क्रियमान, संचित कर्म का, प्रारब्ध कर्म का और क्रियमान कर्म, ये सारे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। संचित कर्म अर्थात कौन से कर्म, संचित कर्म अर्थात ऐसा कर्म, पुराने ऐसे कर्म जिसके कारण हम उसके फल भोग रहे हैं, अर्थात ये जन्म मिला है या भोग भोग रहे हैं, ऑलरेडी भोग भोग रहे हैं, ऐसे कर्म जो संचित कर्म पहले किए हुए कर्म का भोग भोग रहे हैं, फल पक चुका है, फल अभी खा रहे हैं, अर्थात संचित कर्म, ऐसे पुराने कर्म पहले के जन्म के या पास्ट लाइफ के या पास्ट टेंस के पिछले समय के भूत में के ऐसे कर्म जिसका फल मिल रहा है, पक गया फल हम खा रहे हैं। और प्रारब्ध कर्म, कर्म तो कर चुके हैं, अभी फल पका नहीं, अभी फल पका नहीं, प्रारब्ध हम कहते ना, पता नहीं प्रारब्ध में क्या है, कर्म तो कर चुके हैं, फल कब मिलेगा पता नहीं, फल पका नहीं है अभी तक, प्रारब्ध कर्म संचित और अभी तो ध्यान रखिए, फिर और आएगा, बहुत बार आएगा संचित और प्रारब्ध, हमारे जीवन भर यही है। हमारे पूरे जीवन भर संचित और प्रारब्ध और क्रियमान यही। सो संचित कर्म अर्थात जो फल हम चख रहे हैं, हाँ फिक्स हो गया है हमको, ये फल पक चुके हैं, खाए जब खाएंगे, लेकिन फल पक चुका है, खाना ही है वो, जब खाएंगे, अभी तो खाना शुरू भी कर दिए है कुछ, वो संचित कर्म वो फल भी खत्म हो जाते हैं, जो पक गए हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, जो पकने वाले हैं, कर्म तो कर चुके हैं लेकिन पकने वाले हैं, फल मिलने वाला है वो भी खत्म हो जाते हैं, और जो अभी कर रहा हूं एवरीडे वर्तमान क्रियमान कर्म कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? क्रियमान, वर्तमान अवस्था में जो कर्म कर रहा हूं क्रियमान कर्म, ये भी तो कैसे कर रहा हूं पता नहीं, इसके भी तो रोज कई फल बन रहे हैं, कब पकेंगे तो मिलेंगे तो जरूर फल है। तो ये सारे के सारे कर्म, तीनों प्रकार के कर्म क्या करते हैं हमको बांध रहे हैं, हम बंधे हुए हैं कर्म से। परंतु यदि भगवान के उपदेशों के अनुसार हम भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में आचरण उनका करते हुए भगवान का प्रसाद प्राप्त पाते हैं तो ये सारे के सारे कर्म नष्ट होते। कैसे नष्ट हो जाते भाई? मानो संचित कर्म,
संचित कर्म संचित कर्म
कैसे? अरे कैसे कैसे? जब करने से क्या होगा?
आग हुई है,
किसको जलाए? अर्थात किसको? कर्म कैसे जन्म लेते हैं? हमारे अंदर काम, सकाम अर्थात कामना, मानो संचित कर्म का फल मुझे मिल गया, संचित कर्म का फल मिल गया कि जाओ इस संसार में जाके ऐसे कर्म में लिपटे रहो कि सुबह 6 बजे जो शिफ्ट शुरू हो जाती है तो रात को 10 बजे ही बंद हो जाती है, हाँ? और आने के बाद घर पे आते से क्या शुरू रहता है? टीवी खाते, टीवी देखते देखते खाओ, बचते कितने? 12। सो जाओ, सुबह कितने बजे जाना है? तो संचित कर्मों का ऐसा फल मिल रहा है, और मेरी कामना है, मेरी कामना के कारण वो संचित कर्मों का फल मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मेरी कामना भी है ना। परंतु जो इस प्रकार से भगवान पे निर्भर होते हैं, भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए भगवान के, भगवान को अर्पण किया हुआ भोग प्रसाद के रूप में पाते हैं, उनका धीरे धीरे प्रसाद खाने से क्या होता है पता है? शरीर शुद्धि सत्व शुद्ध, क्या हो जाता है? स्मृति शुद्ध हो जाती है, और स्मृति जब शुद्ध हो जाती है तो विप्रमोक्ष अर्थात मोक्ष अर्थात सारे कामनाओं से मुक्ति। जो आहार शुद्ध, जो इस प्रकार से प्रसाद पाता है, वो प्रसाद पाने से उसकी स्मृति शुद्ध हो जाती है, उसकी स्मृति शुद्ध होने से उसके अंदर कोई ऐसी कामनाएं नहीं, और जब वो कामना रहित हो जाएगा तो अपने आप उसके सारे संचित विलीन हो जाएंगे। कामना ही नहीं रहेगी तो संचित की क्या हिम्मत कि आपको बांध दे? कामना यदि नहीं रही तो संचित की कोई हिम्मत है जो आपको बांध दे? संचित इसलिए हमको प्रताड़ित कर रहा है कि संचित कर्मों के अनुसार हम अभी भोग रहे, लेकिन क्यों भोग रहे? अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। क्यों कहते हैं कि भक्ति के द्वारा कर्मों का दहन किया जा सकता है? क्योंकि इच्छा समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, कामनाएं विलीन हो जाती है। तो प्रसाद खाने से इस प्रकार से कामनाएं विलीन हो जाती है। आसान है कि नहीं बताइए? कोई कठिन है कि आप बताइए, आप सोचिए, कुछ इसमें प्रश्न आपको है तो मुझे बताइए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कितनी सुपर सुपर शॉर्ट बात बताइए भगवान ने इस श्लोक में, वेरी पावरफुल। कामनाओं को, इच्छाओं को, आसक्तियों को विलीन करना है तो प्रसाद खाओ। यज्ञाशिष्टांशिनो संतो रुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। कितना आसान है, कभी कभी बहुत आश्चर्य लगता है। यक्ष प्रश्न जो है वो यक्ष प्रश्न यही है लगभग। कितनी आश्चर्य की बात है, इतना आसान कैसे समझ में नहीं आता। अरे हमको अभी भी समझ में नहीं आता, कभी कभी मन में भाव दूजे आ ही जाता है, अरे क्या प्रसाद पाने से सच क्या भगवान खाते हैं। एक हाथ बार नहीं खाए, भोग दिया नहीं खाए, ऐसे ही खाया तो क्या होता है। परंतु यहां कहे कहते हैं सारे किलबिष, संचित कर्म का नाश यदि कोई चीज करता है तो वह प्रसाद। इस बात को हृदय में स्वर्ण अक्षर में या कोई जो भी अक्षर है उसमें लिख लीजिए प्लैटिनम। प्रसाद खाने से संचित कर्म के प्रभाव से मुक्ति हो जा सकती है, संचित कर्म विलीन हो सकते हैं। बार बार बोल रहा हूं मैं, बात वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद महाराज दीक्षा देने के पहले एक एक प्रकार से संकल्प शपथ ग्रहण समारोह होता था, उस शपथ में लिया जाता था एक शपथ सबसे इंपॉर्टेंट, प्रसाद ही खाऊंगा, प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसे कहते थे। भक्तजन क्या करते हैं, प्रसाद ही खाते हैं, प्रसाद के सिवा और कुछ नहीं। और इस श्लोक में उस बहुत बार कहा जाता है कि प्रसाद को इतना महत्व क्यों दिया गया इस्कॉन में। इस्कॉन का कोई भी प्रोग्राम कहीं भी करो उसके बाद क्या होता है, महाप्रसादे गोविंदे। क्यों, कोई शक्कर लग तो हाथ पे हो जाए, नहीं, महाप्रसाद। क्यों, यज्ञाशिष्टांशिनो संतो उच्यन्ते सर्व किल्बिषे, क्योंकि यह प्रसाद खाने से महाप्रसादे स्वल्प पुण्य काम राजन विश्वासो नहीं बचा रहे। शरीर अविद्या जाल, जो शरीर है यह अविद्या का जाल है और इसके कारण कामनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है। और क्योंकि यह आहार जो शरीर जो प्रसाद है, यह प्रसाद इस पेट में जाता है उधर में, तो यह शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर शुद्ध होने से स्मृति शुद्ध होती है और स्मृति शुद्ध होने से विप्रमोक्ष हो जाता है, अर्थात मन शुद्ध स्थिर हो जाता है। मन शुद्ध और स्थिर होने से कामनाएं विलीन हो जाती है और कामनाएं विलीन होने से संचित कर्मों का प्रभाव नहीं होता, चाहे संचित कितना भी बुरा होने का। तात्पर्य रूपाल जी महाराज ने क्या कहा है, ब्रह्म संहिता का श्लोक, प्रेमांजन छ्रित भक्ति विलोचनेन संतस सदैव हृदय, क्योंकि इनका प्रसाद खाने से जो हृदय हो जाता है संतों का, हृदय कैसा हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है। प्रसाद खाने से हृदय सॉफ्ट हो जाता है, मृदु हो जाता है, भक्ति का रस उसमें एब्सॉर्ब होते रहता है हृदय, भक्ति का रस हृदय में एब्सॉर्ब होते रहने से क्या हो जाता है, वो भाव उसके नेत्र में आ जाते हैं। प्रेमांजन छ्रित, ये हृदय में जो भक्ति रस, जो भक्ति प्रेमा भक्ति है, वो आंखों में उत्पन्न हो जाती है और वो कहते हैं काजल, क्या कहते हैं काजल, वो प्रेमा भक्ति का काजल आंख में उतरता है और जिसके कारण भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है।
सो
कहने का अर्थ यह है प्रसाद, प्रसाद ही खाइए, क्योंकि अन्यथा हम बहुत भयंकर कर्म कर रहे हैं। और किए हैं पता नहीं कितने किए हैं, हाँ बहुत कर्म किए हैं खराब, हमको क्या पता कुछ भी किए होंगे। क्या बोले? लस्सी खाए प्रसाद भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन तुरंत भगवान के समक्ष जाके खड़ा होना, भगवान को, भगवान मैं चोर हूं, मैंने बहुत बड़ी चोरी की है, आप आज के आज शिक्षा देके समाप्त कर दो मैटर को। इसको कैरी फॉरवर्ड मत करो, मैं आपको क्षमा मांगता हूँ, मैंने बहुत बड़ी चोरी की है। भगवान दयालु होते, कोई बात नहीं, मैं भी चोरी करता था, तुम भी चोरी की, और छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा मत करना, चोरी नहीं करना। भगवान तो रोज ही माफ करते हैं ना, करोड़ों जीवों को माफ कर रहे हैं, एवरी टाइम एवरी मोमेंट हर क्षण। तो इस प्रकार से कामनाएं नहीं रहती हैं, प्रसाद पाने से शरीर शुद्ध होता है और उसके कारण मन शुद्ध होता है, और इसलिए कामनाएं नियंत्रित होके विलीन हो जाती है, और कामनाएं जब विलीन हो जाती है तो संचित कर्मों का असर नहीं, संचित कर्म हमको बांधते नहीं। फिर दूसरी बात कहा, क्या कहा है? प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म अर्थात क्या? पका हुआ फल, फल पक गया, पिछले जन्म में पता नहीं क्या किया था, अब उसका रिएक्शन आ रहा है, कोर्ट में केस चल रही है ना, 10 साल हो गए चलती रही, लेकिन अब फाइनल जजमेंट आ गया है, वो हो गया संचित, फाइनल जजमेंट आ गया है, उम्र कैद की सजा हो गई है, वो तो फल आ गया है, लेकिन वो उम्र कैद की भी सजा कैंसल हो जाती है, था संचित कैंसल विलीन हो गया। अब क्या है? प्रारब्ध। अरे ऐसे कई सारे ऑफेंसेस किए, दूसरी केसेस चल रही है, बहुत सारी केसेस पेंडिंग में चल रही है, फल तो मिलेगा, प्रारब्ध सुख दुख का फल, सुख आएगा नहीं तो दुख आएगा, ज्यादातर दुख ही आता है, त्रिविध ताप, क्या होगा? त्रिविध ताप, दुख आएगा, क्योंकि प्रारब्ध है, केसेस चल रही है, जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे फल मिलेगा, दुख मिलते जाएगा, यह प्रारब्ध कर्म है। लेकिन कहते हैं प्रसाद खाने से, यत्न कर्म करने से, भगवान के उपदेशों का पालन करने से प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है। कैसे? कैसे ये सारी केसेस कैसे रद्द हो, कैसे विलीन हो सकता है?
क्योंकि अपने अंदर टेट्रा भी रहता है ना, तो खाना मतलब यज्ञ हो गया, जैसे हम बाहर के आदमी।
लेकिन क्या खाना? प्रश्न यही तो है, खाना अर्थात कुछ भी खाना नहीं है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं खाने के लिए? शिष्टा ये शब्द लिखा है इसमें, वही तो चल रहा है कब से। यज्ञ नहीं कहा है, क्या कहा है? यज्ञ शिष्ट, उसका अर्थ क्या होता है? बचा हुआ, भगवान को अर्पण करने के बाद जो बचा हुआ है वो इधर डालो, तब जाके ये अग्नि शांत होगा, लेकिन बचा हुआ प्रसाद, इसीलिए हम खाना नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? प्रसाद बोलते हैं। खाना तो भगवान खाते हैं, हम प्रसाद खाते हैं, है कि नहीं? सो किस प्रकार से प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं?
इसी तरह बुरे तथा अच्छे कर्मों का नाश करता है, और जो बच गया है वो उसके जो अच्छे कर्म है वो हिसाब से उसको नेक्स्ट लाइफ उसको भक्तिमय जीवन यानी ब्राह्मण के तत्व से।
नहीं नहीं वो तो हो गया वो तत्व की बात, लेकिन जिस श्लोक में कहा है कि प्रसाद खाने से प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं, बराबर बात यही चल रही है, प्रसाद खाने से सारे कर्मों से मुक्ति होती है। मुक्चन्ते सर्व किल्बिषे, किल्बिषे अर्थात बंधन, पाप बंधन, बंधन अर्थात कर्म बंधन। कर्म कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। ठीक है, तो संचित का तो हमने देख लिया है ना, सत्व शुद्धि हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है तो मन नियंत्रित रहता है, तो संचित का तो कोई फल मिल भी रहा है तो भी खा भी रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है वो, सत्व शुद्धि हो गई, कामना विरहित हो गया, कोई कामनाएं नहीं है तो संचित। जब आने वाले हैं, अभी कैसे चल रही है, आने वाले त्रिविधता को भी कोई हमको टक्कर मार देगा तो कभी हमारा पेट दर्द होगा, कभी पड़ोसी हमसे झगड़ेगा, कभी बॉस हमको फायर करेगा, इसके अलावा भी हम कुछ कुछ कार्यकलाप करेंगे, कभी इसकी उसकी करेंगे, कभी प्रचार पकड़ेंगे, कभी किसी को भला बुरा कहेंगे, कभी कुछ भी करेंगे तो ये सब का हिसाब किताब तो, इसका तो जजमेंट आना है ना, ये तो प्रारब्ध है, या ऐसा किया होगा उसका भी जजमेंट आना है, किसका किसका आना है ये तो भगवान ही जाने, उसको कहते हैं प्रारब्ध। अर्थात दुख तो आना ही है, हाँ प्रारब्ध अर्थात कैसे, प्रसाद खाने से कैसे दुख, विशेषकर दुख, हम कर्म अर्थात दुख को ही मानते हैं, सुख को हम बंधन मानते ही नहीं है, तो हमारा सबसे बड़ा दोष है सुख को बंधन मानते ही नहीं है मानते हैं कोई सुख को बंधन, उधर सुख तो चाहिए प्रभु जी, अरे बंधन तो चाहिए हाँ गिफ्ट मानते हैं, सुख को बंधन कहा मानते, दुख को बंधन मानते हैं, दुख तो दुख को मानिए, चलो दुख का बंधन कैसे जाएगा, प्रारब्ध कर्म से आने वाला दुख किस प्रकार से जाएगा, प्रसाद खाने से। अभी आप दूसरा अध्याय याद करो, एक आधा श्लोक आपको याद आता है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करते रहना चाहिए,
भक्ति में संलग्न हो
जाओ। अभी तो मुझे आप श्लोक ही बताओ, बताओ मुझे श्लोक बताओ, मुझे ऐसा याद नहीं, 2.3
भक्ति में संलग्न मनुष्य ऐसे जीवन में ही अच्छे मतलब पूरे पाने से अपने को मुक्त कर लेता है, मतलब योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल।
मेरा तो प्रसाद से मतलब है प्रभु, प्रसाद खाने से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और दूसरे आगे के कर्म अभी कौन से चल रहे हैं, प्रारब्ध कर्म नष्ट जो कि दुख है, प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है, दुख नष्ट हो जाता है, पूरा दूसरा अध्याय देखने में तो बहुत समझ आएगा 74 श्लोक है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते,
इसी प्रकार से कृष्ण भवन दुर्निष्ठ व्यक्ति के लिए संसार के तीनों कार्य नष्ट हो जाए है,
सब नष्ट हो जाते हैं, प्रसादे सर्व दुखाना 2.65 वही है ना, मेरा नंबर आगे पीछे हो सकता है, देखिए 65 प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योप जायते, प्रसाद जो है क्या करता है, प्रसाद खाने से हानि दुख सुख किसी भी बंधन से उसका ऊपर, उस भक्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो प्रसाद खाता है, ये सारे दुखों का उपाय है प्रसाद। प्रसाद पाने से प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म अर्थात आने वाले बंधन अर्थात दुख, सर्व दुखाना, इसमें ये शब्द महत्व का है, प्रसादे, ये पहले हो गया है, ये अध्याय हो चुका है अपना ऐसा उपयोग होना चाहिए अध्याय होने का तो इस प्रकार से प्रसाद खाने से प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्यों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सुख और दुख इन दोनों परिस्थितियों में वो व्यक्ति की चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है, वो स्थिर रहता है, इसलिए उसके लिए प्रारब्ध कर्म भी विलीन हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं। कई परीक्षाएं हुई कई भक्तों की, लेकिन वो स्थिर। प्रभुपाद जी का उदाहरण लीजिए, कितनी परीक्षाएं हुई। जब वो अमेरिका में जहाज पे जा रहे थे तो पता नहीं क्यों, लेकिन उनको 3 बार अटैक आया, हार्ट अटैक, शरीर एकदम वीक हो गया। ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी प्रभुपाद जी क्या खाते थे, कैसे खाते थे? वो स्टोर लेके गए थे साथ में, और चावल दाल चावल। ऐसी परिस्थिति में भी प्रसाद खाते थे। तो और भगवान को क्या कहे, पता नहीं मेरा डेस्टिनेशन क्या है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, जो भी होगा वो होगा, मुझे पता नहीं, पर मैं क्या कर रहा हूं, आपके नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहा हूं, प्रसाद खा रहा हूं। तो उनको उस प्रारब्ध कर्म जो भी होगी, जिसके कारण अटैक आया या जो भी हुआ, शरीर प्रताड़ित हुआ, लेकिन क्योंकि प्रसाद खा रहे थे रोज और भगवान कृष्ण के नित्य उपदेशों का नित्य पालन करते थे, आचरण करते थे, तो उनके सारे कर्म, प्रारब्ध कर्म भी खत्म हो गए। अर्थात जो प्रसाद खाते हैं संचित भी खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रसाद खाने से अंदर का मल जो है नष्ट हो जाता है, और हृदय के अंदर जितना भी मल होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, सब मार्जन हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और सुख और दुख, कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत अनुकूल या प्रतिकूल, दोनों परिस्थितियों को वो सहन करता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होता है परिस्थिति, है ना। फिर तीसरा है क्रियमाण कर्म, अभी जो कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म, तुरंत मिलने वाले कर्म, क्रियमाण कर्म कर रहे हैं अभी, अभी के जो कर्म चल रहे हैं हमारे वर्तमान कर्म, इसका भी तो फल हमको बांधते जा रहा है, जो अभी कर्म कर रहे हैं उसका भी फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन लेकिन यह भी विलीन हो जाता है। कैसे? कौन सा योग? स्वल्पमस्य धर्म से, छोटी थोड़ी सी भक्ति भी सारे भयों से हमको मुक्त कर देती है, सारे भयों को नष्ट कर देती है, है ना। लेकिन कभी कभी हमारे ऐसे सूक्ष्म कर्म रहते हैं हमको पता भी नहीं होता, लेकिन जैसे घर में हम अग्नि का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, चक्की आटा पीसते हैं, इसमें कितने जीवाणु मर जाएंगे हमको पता भी नहीं होता, हाँ, ये वर्तमान कर्म, क्रियमाण कर्म है ना। तो ये भी, ये कर्मों से भी पाप तो हो ही रहा है, बंधन तो पड़ ही रहे, हाँ, नहीं, ये क्रियमाण कर्म, वर्तमान कर्म। अब क्या करेंगे? ये कहते हैं कि प्रसाद पाने से यह कर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा भाव यह है कि हम ये जो भी कुछ है ये सब भगवान की वजह से है, भगवान इसके केंद्र में है, और हम जो भी कुछ कर रहे हैं इसका फल कृष्णार्पण, जो भी कुछ फल है वो कृष्ण को अर्पण करने की भाव से क्रियमान कर्म यदि हम करते हैं, तो हमारे जो कर्म है वो अकर्म हो जाते हैं। अकर्म अर्थात जिसका कोई रिएक्शन नहीं, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी कोई बंधन नहीं आता। यदि हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, केवल आटा ही भगवान के लिए नहीं, आप सुबह उठने से केवल खाते ही नहीं है, पीते भी है, पानी भी पीते हैं, उसको पकाते भी है, सब कुछ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं आप, झाड़ू मारते हैं कितने कितने कीटाणु मर जाते हैं। केवल आटा ही नहीं, आपकी हर कर्तव्य हर कर्म आप जीवों को मार रहे हैं। परंतु यदि आप ये कहते हुए इस भाव से, महत्व की बात क्या है, आपका भाव, इन सारे प्राणियों को आप अपने स्वार्थ के लिए यदि मार रहे हो, मेरा पेट मुझे भरना है, अच्छा अच्छा खाना है इसलिए पीस रहा हूं, बढ़िया बढ़िया 10 प्रकार के आटे एकत्रित करके मेरे तृप्ति के लिए खाने के लिए मैं बना रहा हूं, मेरा घर एकदम सुंदर दिखना चाहिए इसलिए मैं झाड़ू लगा रहा हूं, सारे कीटनाशक मार रहा हूं, सबको मार दे रहा हूं, मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए, मेरी इंद्रिय तृप्ति, मेरी मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे लिए, मेरे स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, यदि ऐसे मेरे कर्म है क्रियमान कर्म, तो निश्चित तौर पर ये कर्म हम मुझे बंधन में डालेंगे। परंतु वही मेरा नम्र भाव है कि भगवान आपने मुझे इस दशा में रखा हुआ है, मैं आपके लिए आपके प्रसन्नता के लिए थोड़ा स्वच्छता रखता हूं, मेरा ही मैं स्वच्छता रखूंगा, मेरा मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न मन से मैं आपका चिंतन करूंगा, भगवान मैं जो भी कुछ आटा पीस रहा हूं ये आपके भोग के लिए बनाना है मुझे, बहुत अच्छी तरह से आप पाएंगे, आपके प्रसाद के रूप में भक्त भी पाएंगे, भक्तों को देंगे, भक्त भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे, आपके लिए भगवान ये सब कर रहे हैं। तो यह भाव आने से जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में स्वार्थ का भाव शून्य हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति का भाव शून्य हो जाता है, भगवत भक्ति का भाव ऊंचा हो जाता है, और इसलिए वो जो कर्म कर रहे हैं वो अकर्म हो जाता है। हाँ हाँ दुख हाँ यदि आपकी ऐसी परिस्थिति की जहाँ प्रसाद नहीं है लेकिन आपको कुछ खाना है, फल है, तो आप भगवान के सामने, भगवान भगवत गीता में क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से फल है आपके पास, फल आप सामने रखिए, कोई छोटा सा बुक हमेशा जेब में रखना चाहिए, छोटा सा फोटो या भगवत गीता, ऐसा भगवत गीता का फोटो रखिए, भगवत गीता है मान लो, भगवत गीता को ऐसे रखिए, सामने फल रखिए, तुरंत अपना मनी मन में प्रणाम मंत्र बोलिए भगवान को, बस हो गया, और पश्चात इसके पश्चात खा लीजिए। हाँ तुलसी भी रखेंगे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑफेंसिव फीलिंग मन में आ जाता है कि मैं तो फल खा रहा हूं, भगवान को तो पत्र दे दिया। तुलसी यदि नहीं है तो जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम अर्थात पानी, जल, ये पंच तत्व जो है इसमें इतनी शक्ति होती है कि किसी भी वस्तु को शुद्ध कर देते हैं, 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व, आपके पास जल होता ही है, आपको तुलसी पत्र फल के ऊपर रखने के लिए नहीं है, तुरंत 2 गुण जल उसके ऊपर, ऐसा कीजिए। नहीं भगवान ने तो बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं तुलसी की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि तुलसी प्राप्त तो नहीं, उसी परिस्थिति में आप जल का उपयोग कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि घर सब कुछ है और तुलसी जानबूझ के नहीं रख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको गोवर्धन लीला गिरिराज गोवर्धन की लीला स्मरण भी होगी, ऐसे तो आप कितना भी खिलाते जाएंगे भगवान खाते ही जाएंगे, जब तक तुलसी पत्र नहीं रखते तब तक वो तृप्त नहीं होंगे, लेकिन भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करके यदि आपकी परिस्थिति ऐसी तुलसी पत्र है ही नहीं तो आप तुलसी पत्र के जगह उस समय जल का उपयोग कर सकते हैं, उस फल पे उस अन्न पे या जो भी कुछ आपके पास है 2 गुण पानी उसके ऊपर डालिए, प्रणाम मंत्र बोलिए, कंठी का स्पर्श कर सकते हैं, तुलसी नहीं है तो कंठी का स्पर्श कर सकते हैं आप, हाँ वहां तुलसी कहाँ होती है, वेस्टर्न कंट्री से नहीं, जैसा अपने शरीर का शरीर को नहीं ऐसा नहीं है, देखिए इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, इस प्रकार का अन्न अवॉइड करना चाहिए जो तामसिक जगह से आता है, इसलिए कोई नेचुरल तरीके से उगा हुआ आप ले सकते। मान लो अभी 36 घंटे के जर्नी में मायापुर जा रहे हैं, भूख लग गई और वो आ गया समोसे बेचने, तो समोसा खाएंगे क्या? हाँ, ये सीधा सीधा प्रश्न है मेरा, क्या खाएंगे? भूख तो लग गई, भूखे रहेंगे क्या 36 घंटे? तो अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि क्या क्या ढूंढ सकते हैं आप। बेस्ट तरीका ये है, तो बंगाल में क्या कहते हैं उसको, मरमरा क्या कहते हैं, मुड़ी, 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 बस 1.5 किलो मुड़ी ले जाइए साथ में, कुछ मिले कि नहीं मिले, मुड़ी तो है ही, चुरमुरा कुरमुरा, बंगाली में उसको मुड़ी कहते हैं, है ना, चूरा चूरा जो भी है, जो किसी भी प्रकार से है, किसी ने इस प्रकार से नहीं बना हो, घर से ले जाइए मुड़ी, या घर से जो भी कुछ ऐसा आइटम जो आपने बनाया हो, चार दिन रह सकता है। ये तो व्यवस्था पहले, भक्त बड़े होशियार होते सब व्यवस्था कर लेते। प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सी जगह पे मंदिर है रास्ते में, इधर से भी प्रसाद मंगवा सकते हैं। करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।
मुझे कभी ऐसा होता है कि जो पुराने भक्तों की कभी कथाएं सुनते हैं, तो पुराने जो भक्त होते हैं भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं, तो भगवान साकार रूप में आके ग्रहण करते हैं, और अपन लगाते हैं तो सेम लेवल है या फिर ऐसा भी हो सकता है?
उसमें कोई अंतर नहीं, भगवान भगवान की इच्छा से वो खाते हैं, उनको जैसा, वो स्वतंत्र है, उनको किस हिसाब से खाना है, आँख से खाना है कि मुख से खाना है। किसी भक्त का मुख से खा लेते हैं डायरेक्ट, किसी भक्त का आँख से खा लेते हैं, हम ऑफर करते हैं तो आँखों से खा लेते हैं। कोई भक्त है वो की स्पेशल डिमांड है मुख से आके खाओ भाई भगवान, ठीक है उनका मुख से खा लेते हैं, वो प्रेम। तो भगवान खाते जरूर है, पर ये उनका अधिकार है कि कैसे खाए। मान लो आपने मुझे बुलाया खाने पे आपके यहाँ, आपने बुलाया है तो आप सोचते हैं कि चलो बड़े इनको प्रसन्न करेंगे खिला के, तो आप क्या है, मैं जैसे स्टाइल में खाना चाहता हूँ वैसे ही आप प्रीफर करेंगे भाई, आप नीचे बैठना चाहते हैं, स्टूल पे बैठना चाहते हैं, डाइनिंग टेबल कैसा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। पर मुझे नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है, और आप कहेंगे नहीं स्टूल पे बैठ के ही खाओ, तो वो मुझे कुछ जमेगा नहीं, मतलब अनकंफर्टेबल होगा। ऐसे ही भगवान है, भगवान का गुण होता है कौन से भक्त के यहाँ से कैसे खाए, आंखों से खा ले ज्यादा, क्योंकि इतने सारे भक्त हैं तो एक दृष्टिक्षेप में सभी का खा लेते हैं, है ना। अब ज्यादातर वो क्या खाते हैं, भाव खाते हैं, इसलिए हाँ कर्मा भाई, अरे उदाहरण है, सनातन गोस्वामी का उदाहरण है मथुरा में, ऐसे अनेक उदाहरण है, वो भाव की बात है। देखिए जिस स्थिति में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अदरवाइज घर पे यदि हम हैं तो पंचरात्रि की विधि का पालन करना चाहिए। पंचरात्रि की विधि के अनुसार तुलसी पत्र आवश्यक है, परंतु आप यात्रा पे हैं, यात्राओं में सारी बातें उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको बताया जाता है कि आप जल का उपयोग कीजिए। आप रेगिस्तान में चले गए, वहां पे जल भी नहीं है, फल भी नहीं है, आप क्या करेंगे, आप क्या अर्पण करेंगे बताइए? पेड़ तो हो गए वहां पे, कोई भी उसके पत्र तोड़िए, पत्र तोड़िए और उस पत्र में अपना भाव डालिए, भगवान मैं आपको भूखा नहीं रख सकता, मैं भले रेगिस्तान में घूम रहा हूं लेकिन इसको भाव से, मेरा ये भाव, या तो पाली भी नहीं है, इसको सीखा आम के पत्ते, क्या कहे कि कोई भी ऐसे रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ के पत्ते भगवान जहर भी पी लेते हैं भाव से, शुद्ध भाव से। तो भाव की बात है, नहीं बता रहा हूं मीराबाई के लिए तो पी गए थे, मीराबाई के लिए पी गए थे, प्रेम यदि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।